वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
हम सब आते हैं करने स्तुति धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं
करने स्तुति
धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं, हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा कि सब अपने अपने घर चले गए और यीशु अकेला रह गया। अतः वह अपने शिष्यों के साथ जैतून के पर्वत पर गया और सुबह होने पर वह फिर से मंदिर में आया और उपदेश देने लगा। आज हम व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा के विषय में देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने वचन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय प्रभु जी, जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दीजिए, हमें एकाग्रतापन दीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमारे हृदयों को नई दिशा दिखाने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो किसी न किसी रूप में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित और परेशानी हालत में हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, ताकि वे आप पर भरोसा करने पाए। आपके वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत कीजिए। होने दीजिए प्रभु के आज के इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। इस समय फिर से एक बार हमारी प्रार्थना है कि आप हम सब की सहायता व मदद करें। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यभिचारिणी को क्षमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1-2 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ध्यान रखें कि पिछली रात महासभा की बैठक हुई थी और यीशु के बारे में मतभेद के कारण उनमें फूट पड़ गई थी। निकोदिमस ने यीशु का पक्ष लिया था और वे सब घर चले गए। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 3-4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। मित्रों, ध्यान दीजिए, यीशु सुबह मंदिर में आया और शिक्षा दे रहा था, तभी वहां कोलाहल और भीड़ की आवाज होती है। धर्मगुरु एक स्त्री को खींचते हुए लाते हैं, वह व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार उसे और उसके साथी पुरुष को पत्थरवाह किया जाना था, परंतु पुरुष तो वहां था ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें व्यवस्था पालन की चिंता वास्तव में नहीं थी। वे यीशु को फंसाना चाहते थे, वे देखना चाहते थे कि यीशु किस प्रकार का निर्णय लेता है। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय के 5-6 पद में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ध्यान दें कि उस स्त्री को यीशु के समक्ष डाल दिया गया। जन समूह के मन में उसके लिए कोई भी सम्मान नहीं था। यीशु उनके मन के विचार को जान गया, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 2 उसके 35 में लिखता है, यीशु झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा। वह आरोप लगाने वालों के साथ नहीं था और न ही उस स्त्री को देख रहा था। यीशु के बारे में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु यीशु ने केवल यहीं पर कुछ लिखा और वह भी पांवों द्वारा मिटा दिया गया या हवा उसे उड़ा ले गई होगी। उसने भूमि पर क्या लिखा, मित्रों हम इसे नहीं जानते हैं, परंतु मेरे विचार में उसने यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 पद को लिखा होगा। हे यहोवा, हे इसराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। मित्रों अब इनमें किसने यहोवा को त्याग दिया था, व्यभिचारिणी ने? जी हाँ उसी ने। क्या धर्मगुरुओं ने? जी हाँ उन्होंने भी। उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। मेरे विचार में यीशु यही लिखा और उनके पांव की सूची भी। मेरे विचार में यीशु ने रोमवासी एक स्त्री का नाम भी लिखा जिसके साथ एक फरीसी से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी पत्नी भी नहीं, केवल यीशु उसे जानता था। उसने संभवतः किसी शास्त्री का इफिसुस का पता लिखा और किसी शास्त्री की प्रेमिका का जो गलील में उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सब देख के वे एक एक करके चले गए। पृथ्वी पर किए गए पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होते हैं। भजनकार लिखता है भजन संहिता 90 उसके 8 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा हुआ है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। मेरे प्रियो, यीशु न्याय करने की शर्त रखता है, जिसने पाप न किया हो वह पत्थर मारे। मैं तो बाहर हो गया। किसी टीकाकार ने लिखा कि वृद्ध तो समझदार थे, अतः हुए पहले ही चले गए, परंतु युवा रुके रहे, और जब उन्होंने देखा कि यीशु उनके नाम लिख रहा है तब वे भी वहां से चले गए। वहां यीशु को छोड़ कोई नहीं था, यीशु ही था जो उसे पत्थर मार सकता था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। क्या यीशु व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था? जी नहीं, उसने उस स्त्री और उसके पाप के बीच अपना क्रूस रख दिया। वह तो उसके पाप का दंड भोगने क्रूस की ओर जा ही रहा था। वह न्याय करने नहीं उद्धार करने आया था। मेरे प्रियो, मनुष्य की धारणा यह है कि वह पाप के कारण खो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। वह खो जाने के कारण पाप करता है। वह मसीह यीशु में विश्वास नहीं करता है। मसीह यीशु पाप क्षमा करता है, वह उद्धार करता है। वह संसार के पाप उठाकर मर गया। प्रभु यीशु के पास आने वाला प्रत्येक मनुष्य क्षमा ही पाता है। हम आगे देखते हैं, यीशु जगत की ज्योति है। यीशु का यह अभ्यास था कि किसी घटना या चमत्कार के बाद उपदेश दे। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु कहता है मैं हूँ। पुराने नियम में यहोवा कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हम इसे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, यहोवा अपने आप में अस्तित्ववान है, उसमें सर्वज्ञान और सर्वशक्ति व्याप्त है। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के उद्धार ही के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को प्रकट करने के लिए भी आया था। यीशु साधारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं द्वारा हमें उसके बारे में समझाता है, जैसे रोटी, ज्योति, पानी आदि के द्वारा। वह सामान्य बातों द्वारा असामान्य को प्रकट करता है। वह सांसारिक बातों द्वारा आत्मिक और समय के द्वारा अनंत काल की बातें समझाता है, और वर्तमान द्वारा अनंत भविष्य, और सांसारिकता द्वारा स्वार्गिक, सीमित द्वारा असीमित बातों को हमें समझाता है। जब वह स्वयं को रोटी, जल और जीवन कहता है, तब वह वास्तव में हमें परमेश्वर का प्रकाशन प्रदान करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप में तो है, परंतु वह हमसे दूर नहीं है। वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में पाते हैं, उसने कहा कि वह जीवन की रोटी है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद में वह कहता है कि वह जगत की ज्योति है, और यूहन्ना 10 उसके 9 में वह कहता है कि वह द्वार है, और यूहन्ना 10 उसके 11 पद में वह कहता है कि वह अच्छा चरवाहा है। और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 के 25 में वह पुनरुत्थान और जीवन है, यूहन्ना 14 उसके 6 में वह मार्ग, सत्य और जीवन है, यूहन्ना 15 अध्याय के 5 में वह दाखलता है जिसकी हम डालियां हैं। यहाँ यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ। निसंदेह वह है, क्योंकि उसने फरीसियों और शास्त्रियों के पाप प्रकाशित किए जो व्यभिचारने से कम नहीं थे। ज्योति पाप को दर्शाती है। यही कारण था कि वे उस स्त्री के पास से चले गए थे। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में अब तक का सबसे बड़ा दावा उसका यही था कि वह जगत की ज्योति है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 में, परमेश्वर ज्योति है, वह अपनी पवित्रता और न्याय में सिद्ध है। प्रकाश हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तथा जटिल भेद है। कौन जानता है कि वह क्या है? कभी वे कहते हैं कि प्रकाश लहर है, कभी कहते हैं कि प्रकाश कण है, और कुछ कहते हैं कि वह दोनों है, तो कुछ कहते हैं कि वह दोनों में से एक भी नहीं है। तो क्या ज्योति अंधकार की अनुपस्थिति है, या अंधकार ज्योति की अनुपस्थिति है? जब हम कहते हैं कि कमरा ज्योति से भर गया है, तो क्या उसका भार बढ़ जाता है? प्रकाश के बिना रंग भी नहीं दिखते हैं। कोई वस्तु लाल है तो इसका अर्थ है कि उसमें ज्योति का लाल रंग नहीं समाया है। मेरे प्रिय मित्र, हम ज्योति को नहीं समझ पाते हैं, परंतु यह अवश्य जानते हैं कि अंधेरे कक्ष में बत्ती जलाना आवश्यक है। मसीह यीशु जगत की ज्योति है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज पृथ्वी की ज्योति है। यीशु आत्मिक ज्योति है, जिस प्रकार एक बच्चा भी जानता है कि उसे अंधकार की अपेक्षा ज्योति में रहना है, ठीक उसी प्रकार एक पापी को प्रभु यीशु मसीह में रहना है। यशाया की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 8 पद में यशाया कहता है कि उसमें मूर्ख भी ना भटकेंगे। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो मसीह को जगत की ज्योति स्वीकार नहीं करते हैं। वे जिस ज्योति में हैं, वह ज्योति नहीं परावर्तन है। जिस प्रकार चांद की ज्योति अपने नहीं सूर्य की ज्योति का परावर्तन है, उसी प्रकार हमारा संसार भी मसीह की ज्योति पर निर्भर है। हमारे धर्मशाला, अस्पताल, अनाथालय, गरीबों की सेवा, श्रमिकों के अधिकार आदि सब यीशु के आगमन के परिणाम स्वरूप हैं। इसमें समस्या तभी आती है जब हम ज्योति से दूर हो जाते हैं। आज का संसार चांद के प्रकाश में है, उसे मसीह की ज्योति की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, झोपड़ियों के पर्व में वे मशाल लेकर चलते थे, क्योंकि वे उस आग के खंभे को स्मरण करते थे जो जंगल में उनकी अगुवाई करता था। जब यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तब उसके कहने का अभिप्राय वही आग के खंभे से था। हमें यीशु का अनुसरण उसी प्रकार करना है जिस प्रकार इसराइल जंगल में आग के खंभे के पीछे पीछे चलता था। लेकिन आज दुख की बात है कि हम में से कई लोग सब कुछ जानते हुए भी उस ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। अर्थात हम अंधेरे में जीना चाहते हैं, हम जीना पसंद करते हैं, हम पापमय जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको एक गंभीर निर्णय लेना है ताकि हम उस ज्योति में आ सकें, क्योंकि जब हम अपने आप को उस ज्योति में लाएंगे तो हम अपने पापों को देखने पाएंगे, और जब हम अपने पापों को देखेंगे तब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और उसके लिए क्षमा मांगेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया, आज वह मुझे और आपको भी क्षमा कर सकता है यदि हम उसके पास आए और अपने पापों के लिए उससे क्षमा मांगे। तब क्या आप चाहते हैं कि आप पापमय जीवन व्यतीत करें, या आप चाहते हैं कि आप उससे छुटकारा पाएं? मेरे प्रिय, आज आप स्वयं से सोचें और निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और थोड़े समय इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांच करके देखें। यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं तो हम प्रभु से मांगे कि वह हमें क्षमा करे। जिस प्रकार से उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया, आज वह मुझे भी और आपको भी क्षमा कर सकता है। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए। हमारी विनती है पिताजी, इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं और वे अपने जीवन में पाप का जीवन जी रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे भी उससे छुटकारा पाएं, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके दिलों में कार्य करें, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। उनकी वेदनाओं को आप जानते हैं, उनके तकलीफों को जानते हैं, उनके मजबूरियों को आप जानते हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता करें ताकि वे भी उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह से क्षमा को प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे से फिर पाप ना करें। प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीष से भर दें और उनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत किया है। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं। हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सकते हैं। हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं।
हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं। जाएंगे कुछ ऐसा हम कर जाएंगे, घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा। क्या सोचना कल होगा क्या, लिखेगी ऐसी एक दास्ता, कदमों तले होगा आसमां। घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा। हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं। अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं। हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं। हम भी है फूल इस चमन के, दुनिया को ये समझाएंगे, सारा जहां महकाएंगे। घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा। दिल से ही दिल मिलते रहे, अरमां सभी के खिलते रहे, तो जिंदगी जन्नत बने। घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा। हम जी सकते,